जय ग्रंथराय श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तौ स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। संकर्षण कारणत सै गर्भदोष च पायब्धि सै शेषश्च जस्यांशकला सनित्यानन्दखरं शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद अध्याय 20 श्लोक संख्या 1 और 2 पाठ करके हम लोग श्रवण करेंगे। सबको प्रातःकालीन सत्र में भागवत कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। सब लोग ध्यान से 2 नंबर श्लोक का तात्पर्य है इसलिए इसको में पाठ करेंगे और पहले श्लोक में सुना देंगे। मैत्रयो वाच भगवानपि वैकुंठ साकं भगवता विभो यज्ञपतिरितुष्टो यज्ञभुक्तम् अभासत। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञ के संपन्न किए जाने से श्री भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और ये यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। अभी भगवान के वचन है, श्री भगवान उवाच एष ते अकर्षित भंगम हयमेध सतस्यः हयमेध सतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्यच्छन्तुमर्हसि। एष ते अकर्षित भंगम हयमेध सतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्यच्छन्तुमर्हसि। एष ते अकर्षित भंगम हयमेध सतस्यः हयमेध सतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्यच्छन्तुम् अर्हसि। अरे सबको बोर्ड नजर में आ रहा है क्या? नहीं हाँ? नहीं आ रहे? थोड़ा कष्ट करके पढ़िए एक दो लोग। ए सब पढ़िए, श्री भगवान उवाच एष ते अकर्षित भंगम हयमेध सतस्यः। तत् आत्मानम् आत्मानम् अमुष्यच्छन्तुम् अर्हसि। श्री भगवान उवाच एष ते अकर्षित भंगम हयमेध सतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्यच्छन्तुमर्हसि। माताये श्री भगवान उवाच एष ते अकर्षित भंगम हयमेध सतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्यच्छन्तुमर्हसि। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान विष्णु ने कहा, एष यह राजा इंद्र ते तुम्हारा अकर्षित किया भंगम उत्पात हय अस्य मेध यज्ञ सतस्य एक सोए का ह निश्चय ही क्षमापयत क्षमापार्थी आत्मानम तुमसे अमुष्य उसको क्षन्तुम क्षमा करने के लिए अर्हसि तुम्हें चाहिए। अच्छा प्रसंग इस प्रकार के है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पृथु महाराज व्रत लिए थे तो उसको पूरा नहीं कर पाया। तो अभी पृथु महाराज जी के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्रकट हुआ, उसके बारे में इस अध्याय का इस अध्याय में महाराज भगवान विष्णु का प्रकट के बारे में वर्णन करेंगे, भगवान क्यों प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होकर पृथु महाराज को विविध उपदेश प्रदान करेंगे और उपदेश के पश्चात पृथ्वी महाराज भी भगवान का स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर इस अध्याय है, ये अध्याय है, इस अध्याय को मनन करना चाहिए। पढ़ना तो हो जाएगा किंतु इसके बाद मनन भी करना चाहिए। काल में इंटरनेट में सुन रहा था परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज, अंतिम में एक शब्द बहुत अच्छा शब्द बोले कि हम लोग पाठ तो करते हैं, पाठ के पश्चात मनन नहीं करते। मनन ना करने के कारण ये सब मिट जाएगा, तो इसलिए जो भी एक दो शब्द मिले उसको मनन करते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो चीज टीका रहेगा। तो महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य इस अध्याय का नाम है। तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञ में विघ्न डाला है, 100 यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वो मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो, अतः उसे क्षमा कर दो। किसको लेकर आया भगवान? इंद्र को लेकर आया। कहाँ लेकर आया? यज्ञ स्थल में। बहुत सुंदर। एकदम भगवान के, भगवान बोले पृथ्वी को कि तुम इसको क्षमा कर दो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में आत्मानम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को आत्मा कहकर संबोधित करते हैं। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा सामान्य पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि इंद्रियातीत पुरुष जीवात्मा को शरीर को भी नहीं मानता, क्योंकि इंद्रियातीत पुरुष जीवात्मा को शरीर को भी नहीं मानता। चूंकि आत्मा श्री भगवान का अंश होता है, आत्मा श्री भगवान का अंश होता है, अतः आत्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, शरीर तो बाह्यावरण मात्र है, शरीर बाह्यावरण मात्र है, अतः सिद्ध इंद्रियातीत पुरुष अपने तथा अन्य में भेद नहीं मानता। इंद्रियातीत पुरुष अपने तथा अन्य में भेद नहीं मानता। जम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृतम दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तुरबोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यससुनुमुपयामि गुरु मुनीनां। अभी इस अध्याय में, पहले अध्याय में देवताओं ने पृथ्वी महाराज को वर दिया, वरदान वर दिए। जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहे कि पृथ्वी तुम यज्ञ को बंद कर दो, सवा 100 यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तो पृथ्वी महाराज ने प्रजापति ब्रह्मा जी की बात मान गए और उन्होंने 100 यज्ञ जो करना था वो नहीं किया। तो उसके बाद पृथ्वी महाराज ने स्नान किया, अवभृत स्नान करके, क्योंकि स्नान करके फिर वरान ददो ते वरदा ते देवाहा वरान ददो। देवता लोग ने पृथ्वी महाराज को बहुत वरदान वर दिए। और उसके बाद ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण ऋतिक ब्राह्मण थे, सब लोगों ने पृथ्वी महाराज जी को, पृथ्वी महाराज जी उन लोग को बहुत दक्षिणा दिए और ब्राह्मण ऋतिजों ने बहुत आशीष दिए। बहुत आशीष मतलब शुभ आशीर्वाद दिए। किसको? पृथ्वी महाराज जी को। उसके बाद भगवान यहाँ लिखे टीकाकरण है, कि कर्म भी शुद्ध चित्तस्य प्रसाद हरिनाकृत, क्योंकि शुद्ध कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध हो गया। पृथु महाराज जी का चित्त शुद्ध हो चुका था। कैसे? कर्म भी सत कर्मों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा। उसके पश्चात तेन कृता स्तुति तस्य, उसके बाद तेन कृता पृथु महाराज जी के द्वारा स्तुति किया गया। इस अध्याय में इसका वर्णन, भगवान प्रसन्न होते तब जब कोई शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म करते। पवित्र कर्म क्या है? ना पवित्र कर्म है भक्तिमूलक कर्म। कोई भक्तिमूलक कर्म करे तो उससे भगवान प्रसन्न होते। कोई भी छोटा से भी छोटा कोई भी कर्म हो, भक्तिमूलक कर्म, ये जो हम लोग जो भी कर्म करते एक कर्म है। कर्म और कर्म जग में क्या अंतर है देखिए। क्या श्रील भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, कर्म और कर्मयोग, यहाँ बैठ के क्लास दे रहे, प्रवचन कर रहे, एक कर्म है। एक कर्म कर्मयोग में कैसे ट्रांसफर होता है? कर्म जो है बांधने वाला है, जन्म में तो संसार में चक्कर में इसे घुमाते रहेगा, इसको कर्म कहते हैं। कर्म जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो संसार चक्र है इसमें घूमते रहेगा, यह है कर्म। ये भी कर्म अगर सही कर्मयोग से रूपांतरित ना हो तो ये प्रवचन भी संसार चक्र में डाल देंगे। तो कर्म जो कैसे बनता है, कर्म कर्म जो, इस बहुत ध्यान से इस सुने। कर्म उसमें पहला शब्द है कर्तृत्व का अभाव। पहले उन्होंने क्या लिया, कोई कर्तृत्व नहीं रहेगा, कर्तृत्व का अभाव। दो नंबर है निष्कामता, मैं कर्म करे इसके बिना में मुझे कुछ प्राप्ति की लालसा नहीं है, ये है निष्कामता। तीसरा क्या है? तीसरा है मतलब चौथा है, तीसरा में पहले है कर्तृत्व का भाव, निष्कामता, तीसरा है, चौथा है दंभ, मतलब एक दंभ होता है भजन के कर्म का, एक दंभ होता है ये दंभ। और तीसरा है अभिमान, और एक है तीसरा है जो ध्यान रखे, तीसरा याद आए तो बता देंगे। कर्तृत्व का अभाव, निष्कामता होना चाहिए, नतुबा कर्म कर्म योग नहीं बनेगा। तो यह पृथु महाराज जी, तीसरा है समर्पण, तीसरा है जो भी कुछ करे कर्म करे उसको भगवान में समर्पण कर देना चाहिए। काये न वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात् मनास अनुसृत स्वभावात् करोति यज्जत सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। सब कुछ नारायण में समर्पण कर देना पड़ेगा। जैसे जप कर रहे, ये जप भी भगवान में समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके तो कर्म कर्म योग में रूपांतर होगा, नहीं तो कर्म कर्म बंधन में डाल देगा। कर्म भी शुद्ध चित्तस्य प्रसादो हरिनाकृत, शुद्ध इस शुद्ध पवित्र कर्म के कारण पृथु महाराज चित्त शुद्ध हो चुका था और इससे हरि प्रसन्न हुए थे। और हरि प्रसन्न के पश्चात क्या हुआ, उनको बहुत वरदान देंगे पृथु महाराज का। वरदान देने के पश्चात पृथु महाराज भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में स्तुति करेंगे। तो एस भगवान अपि वैकुंठ साखम मघवता विभो यज्ञर यज्ञपति तुष्टो यज्ञभुक्तम अभासत। भगवान देखिए देवता लोग ने, देवताओं ने पृथु महाराज जी को आशीर्वाद दिए, तो भगवान भी पृथु महाराज जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। भगवान अभी वैकुंठ साकम मघवता विभु यज्ञर यज्ञपति तुष्टो, क्योंकि यज्ञ यज्ञपति है, यज्ञ भूख है। पृथु महाराज जी कुछ कहे, क्या कहे? एस एस इंद्र, एस ए इंद्र ते अकार्षित, एस सन्निकटे, एस इंद्र ते अकार्षित हय मेध सतस्य स अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डाला है, क्षमा पैत, इसको क्षमा कर दीजिए। तम क्षंतुम अर्हसि, तुम क्षमा करने के योग्य हो। आत्मानम अमुष्य, इसको आत्मानम इज इंद्र और तुम मम अवतार हो, मम अवतार हो। टीकाकार ने लिखे दोनों मेरे अवतार हो, इंद्र भी तुम अवतार है और तुम भी अवतार हो, अतएव आत्मानम मानकर। यह प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे कि जोगी तथा तो ज्ञानी एक दूसरे को आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, उसको शरीर नहीं मानते, ये शरीर है ऐसे शरीर भिन्न नहीं मानते, क्या मानते, ये आत्मा है, आत्मा शरीर में कोई अंतर ये नहीं मानते। जोगी लोग हमेशा देखते कि मतलब शरीर भिन्न मान, शरीर मतलब ये मानते हैं, आत्मा सबको आत्मा रूप से देखते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में आत्मनम शब्द महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ना जोगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को, सामान्य पुरुष को भी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपा के च पंडिता समदर्शिनः, पंडित व्यक्ति सबको समान रूप से देखते हैं, समलस्त्रस्म कांचन, ये है पंडित। तो यह कहने का प्रभुपाद जी तात्पर्य ये है जे इस स्थिति में सबको पहुंचना है, जोगी तथा ज्ञानी इस स्थिति में सबको अधिष्ठित होना है। जब तक देहात्म बुद्धि रहेगा तब तक उसको पारमार्थिक कल्याण नहीं होगा, पारमार्थिक कल्याण तब होगा जब वो सत महापुरुषों का संग करेंगे। मनस शिक्षा में श्री रघुनदास गोस्वामी लिखते हैं कि वहाँ 11 श्लोक है, पहला श्लोक है कि मन को हे मन को ब्रज में निवास के लिए कहो, ब्रज में निवास, ब्रज छोड़ के जाना मत। अगर कोई मन करे डे कहीं पे रहे भजन करे, भजन तो मुख्य है, तो उन्होंने लिखे डे भजन मुख्य है, शरीर भले बाहर रहे किंतु मन हमेशा ब्रज में रहे, उनका कहने का उद्देश्य यही है। फिर कहे कि जो असद वार्ता है असद वार्ता से बाचे, असद वार्ता मतलब असद वार्ता भोग और मोक्ष की ओर ले जाते मनुष्य को, इससे उसको रक्षा करे। फिर उसके पश्चात उन्होंने लिखा फिर जीव जब साधन करते काम क्रोध सताते ऐसे इससे कैसे बाचे, उन्होंने लिखते साधक महापुरुष संग करे, संत महापुरुष के साथ संग करे। मानो संत महापुरुष संग भी कर रहे, हरि भजन भी कर रहे, फिर भी अंतराय है भजन में, क्या अंतराय है ना, उन्होंने लिखे जो कपटता है जीव में, कपटता है, कपट तीन, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, एक सनिष्ठ, एक परिनिष्ठित, एक निरपेक्ष। सनिष्ठ भक्त वो है जिसका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भजन करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो अपना भजन में लगे रहेंगे। फिर परिनिष्ठ, इसको विस्तार वर्णन है, इसको मैं अपना ध्यान मनन नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ी गलती है कि सनिष्ठ परिनिष्ठित एवं निरपेक्ष। परिनिष्ठित है वो भगवान सेवा पूजा में रहेंगे, हमेशा निरंतर 24 घंटा भगवान की सेवा में निमग्न रहेंगे, ये परिनिष्ठित। और सनिष्ठ और परिनिष्ठ दोनों गृहस्थ होते हैं, और निरपेक्ष विरक्त होते हैं, विरक्त साधु होते हैं। तो सनिष्ठ अगर कपट तीन प्रकार, सनिष्ठ कपट, परिनिष्ठ कपट और निरपेक्ष कपट। कभी नेक्स्ट सिटिंग में एक, क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, जब में आनंद क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में श्री रघुनाथ गोस्वामी लिखे हैं कि कोई भी कुछ भी करे उसका आराधना रूप से करे, आराधना किए बिना कोई वस्तु फल नहीं देंगे, आराधना किए बिना कोई वस्तु, आराधना से वस्तु शक्तिशाली होती है किसी चीज, जैसे जब ये आराधना रूप से लेना चाहिए कि आराधना है, मंदिर है, तो ये जब ठीक से कर पाएंगे, जब करेंगे मन इधर उधर भागता रहेगा, इस आराधना नहीं, आराधना क्या है, मन को हमेशा ही भगवान में केंद्रित रखे। तो ये क्यों नहीं हो पाते, आज पिथु महाराज जी के यज्ञ स्थल में भगवान प्रकट हुए क्योंकि निष्कपट भक्त थे पिथु महाराज, और हम लोग भी कुछ भक्ति कर रहे बहुत दिनों से किंतु कोई अनुभव नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कपटता है, छल है। देखिए उन्होंने लिखे है, सनिष्ठ साधक वर्णाश्रम विहित विधि विधान का पालन, निषेध का त्याग और भगवान में भगवान की प्रीति विधान करेंगे, यह है सनिष्ठ भक्त। परिनिष्ठ भक्त कौन है? ना भगवान की सेवा परिचर्या तो करेंगे और क्रिया को अनुगत विधि निषेध के विधि निषेध मानते हुए करेंगे, ये करना है ये नहीं करना है। और निरपेक्ष जो विरक्त साधु है, तो इसमें भी तीन प्रकार के कपट, इसको ध्यान से सुने, ये देखिए इसमें हम लोग सभी लोग इसमें है, कपट में है। भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्र सुख साधन में ही तत्पर रहना, यह सनिष्ठ कपटता। भक्ति साधन का बहाना बनाया और बहाना बनाकर क्या किया, इंद्रिय सुख में तत्पर है, किस प्रकार से अपना इंद्रियों का सुख साधन हो। दूसरा है निष्कपट भक्त को सेवा करने के बदले धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति लोगों का सेवा करें। निष्कपट भक्त की सेवा करना चाहिए, उसके बदले क्या कर रहे हैं, विषयी लोग और प्रभावशाली व्यक्ति की सेवा हो रही है, यह निष्कपट, यह सनिष्ठ कपट। तीसरा है आवश्यकता से अधिक अर्थाधिक संग्रह में व्यस्त रहना, आवश्यकता से अधिक अर्थाधिक संग्रह में व्यस्त रहना। चौथा है निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह रखना, निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह रखना। फिर है विद्या अनुशीलन के बहाने कुतर्क करना, विद्या अनुशीलन के बहाने बदले क्या करना, कुतर्क करना। विरक्त साधकों का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्न करना, विरक्त का वेश लिया किंतु क्या, किस प्रकार से मान जस प्रतिष्ठा मिले इस पर यत्नशील होना, इसके लिए प्रयत्न करना कि मेरा नाम हो जाए, मेरा जस फैल जाए, इसके लिए यत्न करना। यह सनिष्ठ कपट, भक्ति साधन का बहाना बनाकर क्या करना, इंद्र सुख साधन में तत्पर रहना। तो फिर परनिष्ठ कपट क्या है, बाहर से परनिष्ठित होने का भाव है, ढोंग है, किंतु अंतर में कृष्णेतर विषय, कृष्णेतर तुच्छ विषय में मन को रखना, मन को निमग्न रखना, मन को फंसा के रखना। बाहर से परनिष्ठित होने का ढोंग करना, अंदर अंदर कृष्णेतर विषय में आसक्त रहना, यह परनिष्ठित कपटता। और है अनन्य प्रेमी भक्तों को संग की अपेक्षा, अनन्य प्रेमी भक्तों की संग की अपेक्षा विषय लोगों के संग करना, यह परिनिष्ठित कपट। इसको बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं छोटा सा रूप से जस्ट हेडलाइंस को ले लिया। फिर नेक्स्ट टाइम मनोज शिक्षा के ऊपर एक दो दिन हम लोग आलोचना करेंगे, कितना सुंदर। इसमें आलोचना करने से क्या होगा ना, हमारे जहाँ छिद्र है, जहाँ मतलब जहाँ कमी है, वह पकड़ में आएगा। अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा क्या करना, विषय लोगों के संग करना, कर्मी ज्ञानी जोगी इन लोगों के संग करना। और जो निष्कपट भक्त है, जो वेशधारी भक्त है, उसको अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझना, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, जीवन निर्माहोपयोगी अथवा वस्त्र के अतिरिक्त तो अधिक संग्रह करना, जितने से काम चल जाए उतना ही संग्रह करना। हरि मंदिर को छोड़कर धनादि के लोभ से विषय लोगों के संग करना, ये निष्कपट, निष्कपट मतलब कपटता है, निष्कपट भक्त ही कपटता है। साधन के बहाने जोशी संग करना, भजन के बहाने अर्थ संग्रह करना, ये है निष्कपट भक्त ही कपटता। तो शिल विशेष करके इस श्लोक में प्रभुपाद इस विषय में तात्पर्य में इस विषय में ट्रेस देते हैं कि भक्तों को कम से कम आत्मा और शरीर में, आत्मा शरीर से अलग है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, इस पर ध्यान रखें। ताले क्या होगा, धीरे धीरे से सबको सम्मान दे पाएंगे। बिना सम्मान दिए कभी भजन नहीं होगा। किसी भी जैसे आचार्य ने लिखा, सकले सम्मान करिते सकते देहनाथ जथा जत, सबको सम्मान दे, छोटा छोटा कीड़ा को भी मतलब व्यर्थ से ना मारे, उसको सम्मान करे, उसको भी जीने के अधिकार है। हाँ, फिर तो सम्मान देने से होगा क्या? तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे अपराध होबे हतम, इससे सबको सम्मान देने से हरि नाम हरि भजन होगा। हरि भजन मुख्य है, सभी जीव का एकमात्र लक्ष्य है हरि भजन। श्याम सुंदर प्रभु ने 3-4 दिन आप लोग सेमिनार सुने होंगे, बहुत अच्छा शिक्षाष्टकम के ऊपर बोले कि हरि नाम से 7 प्रकार का फल होता है। 7 प्रकार, चित्त दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधुर जीवनम, आनंदाम्बुदि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतरूपी दर्पण, चित्तरूप दर्पण का मार्जन होगा। भव महादावाग्नि, जो संसार में जब जीव जल रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर में जो समय बिता रहे, इस चक्र का आवागमन बंद हो जाएगा। और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, हृदय में श्रेय और प्रिय, सभी जीव प्रिय के पीछे भाग रहे हैं, उसको श्रेय की प्राप्ति की लालसा आ जाएगी। श्रेय श्रेय क्या है? भक्ति करना है। भक्ति क्या है? प्रभु का नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे बड़ा पवित्र कर्म है। कोई अगर निष्ठा सह करे, निष्ठा से प्रभु का नाम का जप करे, इसमें कोई मिलावट नहीं। कथा में बहुत सारी मिलावट है, किंतु इस पवित्र नाम में कुछ मिलावट नहीं है। शुद्ध नाम से, शुद्ध भाव से कोई अगर पवित्र नामों का जप करे, निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। तो सर्वात्म स्नपनम, उसमें डूबना है, उसमें निमज्ज होना है, उसमें अवगाहन करना है। सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस प्रकार प्रभु के नामों की जय हो। तो सभी जीव को आत्मा समझना, सभी जीव को मतलब प्रभु परम पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रति जीव में निवास कर रहे, किसी को आघात नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। हाँ, दया भूतेश लोलुप्तम मार्दव हृदय चापलम, सभी जीवों में दया करें। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ ये जो ग्रंथ सुनने से, सुनिले खंडिवे चित्तेर अज्ञान आदि दोष, ये सुनने से क्या होता है? खंडिवे चित्तेर अज्ञान आदि दोष। अज्ञान आदि क्या है? 5 प्रकार का अज्ञान है। 5 प्रकार अज्ञान क्या है? स्वरूपेर भ्रम, स्वरूपेर अप्रकाश। सुनिले खंडिवे चित्तेर अज्ञान आदि दोष, कृष्णे गाढ़ प्रेम हवे पाइबे संतोष। ये जो हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भी एक आराधना है। रोज नियमित रूप से आके कथा सुनना, ये भी एक आराधना। कोई अगर आराधना में उसका लग जाए, नहीं रोज कथा सुनना है, तो निश्चित उसका कल्याण होगा, क्योंकि ये आराधना है। आराधना मतलब जो चीज नियमित रूप से रोज चलता रहे, उसको आराधना कहते हैं। आज किया, काल सुना, परसों नहीं सुना, ये आराधना नहीं है, ये गाफिलती है। नहीं, कुछ भी हो, एक विद्यालय में, एक मतलब गुरुकुल में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, तो एक ने एक विद्यार्थी को वहाँ भेजा, तो गुरुजी ने क्या किया, वो विद्यार्थी को कहाँ लगा दिया? गौशाला में। कहाँ कितना गौमाता है उसको गिनने में लगा दिया। उसका वही सेवा है, उसको पढ़ने का कोई फुर्सत नहीं है, पढ़ने का कोई फुर्सत नहीं, कोई समय नहीं, उनके पास कोई किताब वगैरह कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम गौ माता के गिन के मतलब जहाँ गौ माता रहती है वहाँ गिन के रखना और फिर गिन से छोड़ना, ऐसे उनको कुछ सेवा दिया था गौ माता की। रोज यही करता था। तो उनको कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उनको ब्रह्म ज्ञान दान किया। कहने का उद्देश्य यह है, आराधना से जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो उसमें सारा ज्ञान अपने आप प्रवाहित होने लगेगा। तो सुनिले खंड विचित्र अज्ञान आदि दोष, कृष्ण गाढ़ प्रेम हवे पाइबे संतोष। अज्ञान आदि क्या है? पांच प्रकार का अज्ञान है। स्वरूपेर अप्रकाश, स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम क्या है? ना आमी आत्मा, मैं आत्मा हो और शरीर नहीं हो, इसका ज्ञान होना। मैं शरीर नहीं हो, शरीर मैं आत्मा, इसको ज्ञान, इसको जानना। विपर्यास, देहादिते अहम बुद्धि, देहात्म बुद्धि, इसको कहते विपर्यास। भेद, भोगेर इच्छा, भोग की इच्छा, भोग की इच्छा, इसको क्या कहते भेद। चौथा क्या है? भय, भोग, भोग की इच्छा से मैंने भोग करने जा रहे हैं, भोग की इच्छा मैंने भोग सामग्री में विघ्न डाला, तो इसमें भेद होता है, भय होता है। भोग इच्छा है विघ्न आशंका, इसका मतलब भोग करने की इच्छा है, कोई किसी ने विघ्न डाला उसमें आशंका है। और पांचवा है शोक, नष्ट, किसी वस्तु नष्ट हो जाएगा इसके विषय में शोक करना। धरो कुछ सामग्री रखा है, अरे ये तो अगले समय क्षण में नष्ट हो जाएगा, इसके विषय में सोचते हुए शोक करना। ध्यान रखें, अज्ञान, विपर्यास, भेद, भय और शोक, ये है अज्ञान। स्वरूप का भ्रम, स्वरूप भ्रम, विपर्यास, भय, भेद और शोक, ये है पांच है अज्ञान। फिर 20 प्रकार के दोष है। दोष क्या है? ना 18 प्रकार, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रसड़ा, उल्वन काम, काम जो सताते, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, वैषम्य, परोपेक्षा, ये दोष है 18 प्रकार के। शास्त्रों में 18 प्रकार का दोष बताया, ये सब नष्ट हो जाएगा कोई अगर प्रेम से इस हरि कथा का श्रवण करे। तो आज के विषय में भगवान का प्रकट है, आज भगवान पृथु महाराज जी के यज्ञ में प्रकट हुए। संक्षेप में कहने का उद्देश्य ये था कि पवित्र कर्मों में जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब भगवान का प्रकट होता है। तो पृथु महाराज जी के यज्ञ में भगवान शुद्ध कर्म यज्ञ, पवित्र कर्म यज्ञ किए और यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के कारण कौन प्रकट हुए? भगवान आविर्भूत हुए। उसी प्रकार मेरा कहने का उद्देश्य आज ये था, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे कि योगी लोग जो महान पहुंचे हुए संत महापुरुष है उस सबके सम्मान करते। इसी प्रकार हे भगवान कहते हैं कि हे पृथु, तुम इनको क्षमा कर दो। किसको? इंद्र को क्षमा कर दो। इंद्र क्यों क्षमा करे? ना इंद्र और तुम मेरे दोनों अवतार हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मम अवतारयो, टीकाकरण लिखा, तो मम मेरे अवतार हो, अतएव तुम्हारा कर्तव्य क्या, क्या कर्तव्य? इंद्र को क्षमा कर देना। तो इसीलिए इस संसार, जब हम लोग इस यहाँ है इस धरित्री पर, कुछ भूल त्रुटि हो जाती है विभिन्न बातों बातों से, चलने फिरने से, व्यवहार से कुछ भूल त्रुटि होती होती है। तो इस पर ध्यान ना रखें, ध्यान रखें कि न सब आत्मा है, कुछ व्यवहारवश, कुछ संस्कारवश किसी प्रकार भूल हो सकती है, इस पर ध्यान ना रखें। ध्यान रखें कि ये प्रभु के भक्त है, इस पूर्व के तो संस्कार के कारण ही इस प्रकार व्यवहार करें, इसका कोई दोष नहीं है, इसका किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसका दोष क्या? पूर्वकृत संस्कार है। संस्कार के कारण आप देखना किसी किसी का व्यवहार बहुत कड़क होता है, भले वो अच्छा शब्द बोल रहे हैं किंतु बहुत कड़क लगता है, हाँ लगता है कि अरे ये तो बहुत कड़क शब्द है, किंतु उनका भाव ये नहीं है, उनका पूर्वकृत संस्कार है। इसी प्रकार भगवान का कहने का उद्देश्य पितु महाराज जी के माध्यम से हम लोग को कि सबको आत्मा समझे, सबको उन्नत समझे, सबको सम्मान दे, किसी के प्रति देश भावना ना रखे। ये कहने से क्या होगा ना, मेरे भजन कर पाएंगे। भजन मुख्य है, भजन में क्या, हाँ स्मरण क्रंदन यही है भजन। तो निरंतर प्रभु का स्मरण होगा, प्रभु के विरह में मतलब जो जो विलाप, जो विरह, जो तड़पना, जो ये सब जो लक्षण है, जो लौल्य, प्रभु की प्राप्ति की जो लौल्यता है, ये सब आ जाएगा। कब आएगा, जब इस प्रकार से चिंतन होगा कि सब जीव प्रभु के अंश है, किसी में कोई कमी नहीं है, छोटी से छोटी जीव भी प्रभु के अंश है, इसको व्यर्थ से इसको मारना नहीं चाहिए, कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। ये थोड़ी समय के लिए धरती पर आए कुछ कार्य के लिए, फिर चले जाएंगे, फिर क्यों मैं इसके कर्म का भागी बने। इस प्रकार की धारणा मन में रखे और आगे चलते रहे। रोज इस प्रकार की भावना से क्या, भावना ही भक्ति है। जिसने जितनी भावना अच्छी होगी उतने ही भक्ति में आगे प्रगति करेगी। अगर भावना अच्छा नहीं है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकती है। तो इसलिए भावना को उन्नत उन्नत करते रहना चाहिए। नहीं, मेरी भावना कभी नीचे गिरने देना नहीं चाहिए, कभी नीचे की ओर जाने देना नहीं चाहिए। भावना को हमें किस प्रकार से दूसरे की सेवा की भावना रखे, किसी प्रकार दूसरे से लेने की भावना ना रखे। हाँ, हमें से किस प्रकार से मेरा जो भी संपत्ति है, जो भी है मेरा पास, थोड़ा एक ग्लास पानी भी है उसको दूसरे को पिलाकर पिए, इसमें क्या होता है, अंतर शुद्ध होता है। अंतकरण निर्मल होते ही भगवान का कृपा प्रसाद अपना आप आ जाएगा, इसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जब हरिनाम मिला, प्रभु के नाम की सुंदर जप करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसको किस प्रकार से अच्छी तरह से नाम जप साधन करे, इस पर ध्यान रखे, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के अनर्थ बीच में आ जाता है, करने नहीं देते। हम करना चाहते कि प्रभु का नाम बहुत अच्छे ढंग से करें, किंतु बीच में बहुत पर्दा आ जाते हैं। तो पर्दा को काटने के लिए एक ही तरीका है कि सबसे क्षमा, काल महाराज ने एक सुंदर शब्द लिए, सस्मिन दिनत्व भावना, हमें से अपने को दिन भावे, कभी अपने को बड़ापन ना भावे कि मैं बड़ा हो, मैं बहुत श्रेष्ठ हो, मैं बहुत उन्नत हो, इस प्रकार की भावना ना रखे। क्या भावना रखे, दिनत्व भावना, दिनत्व मतलब दीन भावना रखे। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें, और फिर यहाँ आगे श्लोक बहुत सुंदर सुंदर भगवान का उपदेश है। ये उपदेश शुरू करेंगे, आए तो शुद्ध एक कहे इसको क्षमा कर दो इस श्लोक में, और नेक्स्ट आगे श्लोक में कहेंगे कि जो जीव दूसरे को दुख देता है वो मेरी देवी, वो मेरी माया से उसका चित्त भ्रमित है, उसका जितना दिन वो ज्ञान आहरण किया है उसका ज्ञान सब व्यर्थ है, इस प्रकार को भगवान ने पृथु महाराज जी कहेंगे। वृद्ध सेवा मतलब जो ज्ञानियों की सेवा की है बहुत दिनों से, वो अगर मेरी माया से दूसरे को कष्ट पहुंचावे तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। तो इस आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। फिर भगवान कहेंगे, देखिए ये जो शरीर है, ये आत्मा है, हाँ। चलो आगे बहुत सुंदर सुंदर भाव है, स्वयं ज्योति निर्गुण सो गुणाश्रय सर्वतोनावृतम साक्षी निरात्मा आत्मात्म पर जयम संतम आत्मान आत्मस्तम वेद पुरुष नाज्योति प्रकृति से तदगुण से मई स्थित। फिर एक श्लोक बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर एक शब्द में भगवान ने लिखे, जो साधारण में न माम नित्यम निराशी श्रद्धान्वित, जो श्रद्धा से कामना से रोहित होकर मेरी साधना करती है, करते हैं, निश्चित उसकी साधना से मैं प्रसन्न होता हूँ। निष्काम होना पड़ेगा, कामना रहित होकर भगवान की आराधना करना पड़ेगा। किसी की कामना है किसी के अंदर तो वो निश्चित रूप से उसको दुख पहुंचाएगा। तो भगवान लिखे, जब साधर्म में ना, साधर्म में मतलब वर्णाश्रम धर्म में रहे और मेरी आराधना करे, निश्चित रूप से उसकी आराधना से मैं प्रसन्न होंगे। कामना से दूषित हो जाता है, कामना से जीव के चित्त दूषित हो जाते हैं। इसलिए कामना को छोड़कर विहाय कामान जो सर्वान पुमाम शरत निष्प्रह निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। कामना को छोड़कर चले, निश्चित रूप से उस शांति को प्राप्त करेंगे, भगवान ने कहे दूसरा स्कंद में आखिरी अध्याय आखिरी श्लोकों में। तो इसलिए कामना जीव को मलिन, जीव के मलिन आत्मा जो अंतकरण को मलिन करते हैं। तो पवित्र कामना क्या है? न मैं कृष्ण के भक्त हो, मैं कृष्ण की आराधना करना चाहता हूँ, इस प्रकार की कामना अच्छा है। किंतु किसी प्रकार के भौतिक भोग की लालसा करना ये व्यर्थ अन्याय है। तो आज श्लोकों में मैं विशेष ध्यान नहीं दे पाया, कुछ मनन नहीं कर पाया, जस्ट केवल बैठ गया। कहने का उद्देश्य ये है कि आप लोग इसको बारंबार पढ़ें, इसको मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि पृथु महाराज चरित बहुत सुंदर है। उनकी महिमा में लिखे हैं टीकाकरण है, कोई अगर इसको पढ़े 23 अध्याय में आखिरी में लिखे, कोई अगर रोज इसको पाठ करे, कोई निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बहुत सकाम कर्मियों के लिए, यद्यपि भक्तों के लिए नहीं, इस प्रकार उसको एक प्रकार फल मिल जाएगा, इसे लिखा है। तो कहना एवं भक्तों का निर्मल प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार के वहाँ लिखा है। तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत प्रेम से, बहुत अच्छा भाव से इसको अध्ययन करें और इस प्रकार से धाम में रहकर भगवान भगवत भजन करें। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
दे दो दे
कीजिए।
मच्छर बहुत होते हैं, हिट करना पड़ता है।
हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए हिट कर देता हूँ क्या?
बांसना पड़ेगा।
सही है, गलत है?
ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि उतना पाप नहीं, लेकिन कुछ तो रिएक्शन होना पड़ेगा, कुछ मात्रा, पूरा मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में आपको इतना भजन करना पड़ेगा कि वो अपना भाग जाए।
ऐसे तो नहीं होता ना, वृंदावन में ही रहता हूँ मैं, वृंदावन में ही रहता हूँ।
अच्छा, ध्यान से ध्यान रखें, व्यर्थ ना मारे अपना, ऐसे व्यर्थ ना मारे।
गेट खोल देता हूँ, जितना भगना हो भग जाता है।
व्यर्थ है ना, को कष्ट पहुँचावे, ऐसे अपना आप यदि हो जाए किसी प्रकार से, उसके ऊपर भगवान क्षमा कर देते, ऐसे हो जाता है। हम लोग का भी होता है
अपराध हो जाता है, लेकिन अपराध तो अगर नहीं करें तो हम अपने काट लेंगे।
ध्यान रखना पड़ेगा।
कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि भगवान का स्मरण करो और युद्ध करो,
वही लुक रखे, उसी का चिंतन करके आगे चलना पड़ेगा।